हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए 365। इतना बोलते हुए मनस्वी ने अनय का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लगभग खींचते हुए घर के अंदर जाने वाले दरवाजे की ओर ले जाने लगी। लेकिन तभी अनय ने उसका हाथ ऊपर से थोड़ा कसकर पकड़ लिया और उसे वहीं गार्डन एरिया में रोकते हुए बोला, ऐसे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है, तुम मानो या ना मानो बीच में तो सारी चीज़ें आती हैं और इन सारी चीज़ों से ही तो रिलेशनशिप डिफाइन होता है, सिर्फ यहाँ पर लेकर आने तक की बात नहीं है। अनय ने आगे कहा, जब हमारे थॉट्स कभी भी मैच नहीं होते तुम उसे यहाँ से हटा देना चाहती हो और तुम्हें लगता है ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि तुम सिर्फ सिचुएशन से दूर भाग रही हो या उस प्रॉब्लम को कुछ टाइम के लिए टाल रही हो, बट ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अनय ने अपनी तरफ से भी पूरी सिचुएशन और पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर मनस्वी ना चाहते हुए भी सोच में पड़ गई और फिर बोली, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, बट फिलहाल अभी यही सबसे बेस्ट रास्ता है। और ये बताओ, अच्छा अगर ये सही नहीं है, इतना ही गलत है तुम्हारी नज़रों में, तो फिर तुम ही बताओ ना कोई परमानेंट सोल्यूशन। मनस्वी ने अनय की आंखों में देखते हुए उससे ये सवाल किया। अनय बोला, वो हाँ मेरा मतलब है कि अभी मेरे पास भी और कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जैसे मैं तुम्हारी बात पर अग्री नहीं करता वैसे ही मैं आदित्य की बात पर अग्री नहीं करता, क्योंकि तुम दोनों ही कहीं ना कहीं गलत हो। और तुम सही हो क्या? पीछे से आती हुई एक जानी पहचानी सी किसी आदमी की आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ी। ये सुनते ही वे दोनों अपने पीछे मुड़कर देखने लगे। वहाँ पर विराज के पेरेंट्स मिस्टर सहगल अपनी वाइफ और बेटी अवंतिका के साथ वहाँ पर खड़े हुए थे। पूरे सहगल परिवार के वहाँ पर होने की उम्मीद मनस्वी को भी नहीं थी। उसे लगा था कि उसने विराज को यहाँ पर छिपा कर रखा है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि शायद विराज की माँ को इस बारे में पता चल गया था, क्योंकि पहले वो दोनों को ही यहाँ पर लेकर आने वाली थी, लेकिन फिर उसने उन्हें अपने घर वापस जाने को कहा था। विराज को अपने साथ लेकर यहाँ आ गई थी। ये सब कुछ याद करते हुए मनस्वी ने एकदम से अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, शिट, बस यही बाकी रह गया था क्या? वहाँ पर पूरे सहगल परिवार को देखकर अनय भी मनस्वी की ही तरह सदमे में था, लेकिन वो सवालिया नज़रों से मनस्वी की तरफ भी देख रहा था। दूसरी तरफ मनस्वी के पास अनय के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था, वो खुद ही उन लोगों को वहाँ देखकर शॉक्ड थी। तभी मनस्वी के अंकल मिस्टर सहगल यानी कि विराज के पापा आगे आते हुए बोले, मनस्वी बेटा ये ज़रूर तुम्हें धमका रहा है ना, मुझे समझ आ रहा है। वैसे भी तुम्हारा पति के बनने के लायक तो था नहीं, लेकिन बस ऐसे ही इसकी अच्छी किस्मत समझो या तुम्हारी बुरी किस्मत कि ये बन गया, लेकिन अब ये इस तरह से बोल रहा है, तुमने इसे इतनी छूट क्यों दे रखी है? मिस्टर सहगल ने काफ़ी बुरा सा मुंह बनाकर अनय की तरफ देखते हुए ये सब कुछ कहा, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि अनय को वैसे भी आदत है ये सब कुछ सुनने की। मनस्वी से जुड़े हुए लोग, उसके रिलेटिव, बिजनेस पार्टनर, दोस्त, जो भी हैं, उन लोगों में से कोई भी उसे कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं देता और ना ही उसे मनस्वी के लायक समझता है, क्योंकि मनस्वी खुद भी उसे अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती थी पहले। और उनके रिश्ते के बीच में जो कुछ भी चेंजेस आए हैं वो फिलहाल पिछले कुछ महीनों में ही आए हैं और ये सब अभी तक उन दोनों के बीच ही है, बाकी सारे लोगों को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं है। अनय उन लोगों के ओपिनियन को इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देता है, इसलिए उसे इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन मनस्वी के लिए अब वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए मनस्वी को अपने अंकल की ये बात बहुत ही बुरी लगी और उसने आगे आते हुए कहा, बस बहुत हो गया अंकल, आप ना हम मेरे रिश्ते को छोड़ दीजिए और पहले ना अपने बेटे को संभाल लीजिए, वो जिस तरह की हरकतें कर रहा है ना जेल में होना डिजर्व करता है, वो तो शुक्र मनाइए कि वो अभी यहाँ पर है। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? आंटी ज़रूर आपने ही बताया था ना, मैंने मना किया था ना आपको, लेकिन? मनस्वी ने उनकी तरफ देखते हुए सवाल किया। मिसेस सहगल चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रहीं, उन्होंने तो फिलहाल कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके साथ खड़ी उनकी बेटी अवंतिका ने ऊपर से नीचे तक एक नज़र अनय पर डालते हुए कहा, दी आप कब से जीजू की साइड लेने लगी, आप दोनों में तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और विराज भाई वो इतने बुरे कब से हो गए आपकी नज़र में, आप तो उनके साथ ही थी ना। मनस्वी इस वक्त अनय के बारे में कुछ भी गलत सुनने को तैयार नहीं थी और उनके बीच का जो इक्वेशन चेंज हुआ है वो अभी सबको बताना भी नहीं चाहती, खासकर दिखाना या जताना नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती थी ये सब अनय को पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में ये सब सुन नहीं सकती थी। इसलिए अवंतिका की बात पर मनस्वी ने उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, अवंतिका छोटी हो तो कम ही बोलो, इतना बोलना अच्छा नहीं होता, और वो भी अपने से बड़ों के लिए। और रही बात तुम्हारे भाई की, तो तुम्हें भी पता नहीं है कि वो क्या क्या कांड करता रहता है, तुम्हारे कॉलेज की ही एक लड़की के पीछे लगा हुआ था कितने टाइम से, और उस पर जानलेवा हमला भी किया है उसने, शुक्र मनाओ कि वो अभी जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। मनस्वी की ये बात सुनकर अवंतिका की तो बोलती बंद हो गई। उसने एक नज़र अनई की तरफ देखी जरूर, लेकिन अनई उन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो मनस्वी की तरफ अपना चेहरा करके खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे पता था वो लोग उसे कुछ खास पसंद नहीं करते। इसके अलावा मनस्वी भी उन लोगों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही थी, और अनई जानता था कि वो कर भी लेगी, इसलिए भी उनके बीच वो कुछ नहीं बोला। मनस्वी की बात सुनकर एकदम सदमे से अवंतिका ने कहा, नहीं, ये सब विराज भाई नहीं, मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और कौन सी लड़की, मुझे इस बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया, वो तो मुझसे जल्दी कुछ भी नहीं छिपाते हैं ना। अवंतिका को ऐसे सदमे में देखकर मनस्वी ने कहा, ओ प्लीज़ अवंतिका, अपनी ये थर्ड क्लास एक्टिंग बंद करो। तुम्हें भी अच्छी तरह से पता था कि तुम्हारा भाई तुम्हारी ही दोस्त के पीछे पड़ा है। वो लड़की याद होगी तुम्हें, सुनैना, वो तुम्हारे साथ ही तो है ना कॉलेज में, तुम तीनों का ही सेम क्लास है, तो फिर तुम्हें भला कैसे नहीं पता होगा। और इसीलिए तो वो मेरा साथ भी दे रहा था आदित्य को बर्बाद करने में, लेकिन मैंने जब उसके गलत इरादों को जान लिया तो मैंने उसको इन सब में शामिल नहीं किया और अपना मामला खुद ही हैंडल किया, क्योंकि मैं अब ये सब नहीं चाहती। ये बात बोलते हुए मनस्वी काफ़ी शर्मिंदा लग रही थी, और वो अनई की तरफ देखकर उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि सच में पहले तो उसने ये सब कुछ सोचा ही था, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती रियलाइज हुई। लेकिन ये अच्छा हुआ कि वो समय रहते ही संभल गई, जबकि विराज के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसे लगा कि वो कैसे भी बस सुनैना को हासिल कर लेगा, जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ। तब विराज की माँ ने आगे आकर मनस्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा तुम इन लोगों की बात का बुरा मत मानो, ये तो बच्चे हैं और बच्चों से ही तो गलतियाँ होती हैं। इसके बाद विराज की माँ ने अपने पति और बेटी की तरफ देखकर उन्हें डांटते हुए कहा, आप लोग भी ये सब क्या लेकर बैठ गए हैं, आप लोगों को कुछ पता भी है, मनस्वी ने हम लोगों की बहुत मदद की है, उसने ही मुझे और विराज को वहाँ से बचाया था, नहीं तो वो। इतना बोलते हुए मनस्वी की माँ अपनी बात पूरी करने से पहले ही चुप हो गई, क्योंकि वो आदित्य का नाम नहीं लेना चाहती थी वहाँ पर।
इसलिए उन्होंने तुरंत ही बात का टॉपिक बदलते हुए मनस्वी की तरफ देखकर उससे पूछा, अच्छा ये सब छोड़ो और अभी बताओ मनु बेटा, विराज कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना, तुम उसे जेल नहीं भिजवाओगी ना, एक छोटी सी गलती के लिए अपने भाई को एक मौका दोगी ना सुधरने का, जैसे तुमने मुझसे कहा था। विराज की माँ ने मनस्वी का हाथ पकड़ते हुए उसे ये सब कुछ पूछा। उनकी बात का कोई भी जवाब देने से पहले मनस्वी अपने साथ खड़े अनय की तरफ देखने लगी। उनकी नज़रें मिली, लेकिन अनय ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो अपना डिसीजन मनस्वी, आदित्य या फिर किसी पर भी थोपना नहीं चाहता था, और उसे पता था कि वो खुद भी इतनी स्मार्ट और केपेबल है कि अपना डिसीजन तो खुद ले ही सकती है। और मनस्वी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक और कार गेट के बाहर आकर रुकी। वे सब अभी भी वहाँ घर के बाहर वाले गार्डन एरिया, घर के कंपाउंड में खड़े हैं, जहाँ पर बार बार घटनाएँ होती हैं। सभी का ध्यान मेन गेट के बाहर आकर रुकी उस कार की तरफ हो गया। वे सब ये सोचकर परेशान थे कि इस वक्त भला कौन आया होगा वहाँ पर, लेकिन तभी उस कार के पीछे एक और कार वहाँ पर रुकी। एक साथ दो कारें देखकर वे सभी थोड़ा परेशान हुए, और उन्हें लगा कहीं विराज को पकड़ने के लिए पुलिस या कोई ऐसा नहीं आया है, या फिर कोई भी ऐसा जिससे उनको खतरा हो। ये देखकर वे सभी घबरा गए। मिस्टर सहगल ने मनस्वी से पूछा, मनस्वी कौन आने वाला था, इस वक्त तुम्हें पता है क्या? मनस्वी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने मना करते हुए नहीं में अपना सिर हिलाया। लेकिन मनस्वी के साथ खड़ा हुआ अनय भी गौर से इस तरफ देख रहा था, और वो इस कार को कुछ थोड़ा बहुत पहचानता था। उस तरफ देखकर काफ़ी सीरियस होते हुए अनय ने मनस्वी से कहा, तुम इन सब लोगों को अंदर लेकर जाओ, मुझे पता है कौन आया होगा। अनय की ये बात सुनकर मनस्वी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन उस वक्त उसने उसे कोई भी बहस नहीं की और सिर्फ अपना हल्के से सिर हिलाया। और विराज की माँ ने तो पहले ही उसका हाथ पकड़ा हुआ था, तो मनस्वी ने उनसे कहा, चलिए आप मेरे साथ अंदर आइए आंटी। और फिर उसने अवंतिका और उसके पापा की तरफ देखकर कहा, आप दोनों को क्या अलग से कहना पड़ेगा। इतना बोलकर वो घर के अंदर की तरफ ही बढ़ गई। वो सारे लोग घर के अंदर की तरफ बढ़े, वहीं अनय उसके ओपोजिट मेन गेट की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसे पता था आदित्य ही आया होगा, क्योंकि उसने ही रास्ते में उसे मैसेज करके बताया था कि विराज वहां पर है। अनय गेट पर पहुंचा, तब तक आदित्य भी अपनी कार से बाहर निकलकर गेट से अंदर की तरफ ही आ रहा था। क्रमशः